नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया, कौरव सेना में पांडव सेना में हाहाकार मच गया। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई उससे कोई प्रसन्न नहीं था, न कौरव न पांडव। उस समय एक बार अर्जुन रथ से उतरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़े थे, भगवान ने उसको रोक दिया। कौरव सेना जाने लगी, अश्वत्थामा बीच में मिला और अश्वत्थामा ने पूछा कि आज आपकी सेना भग क्यों रही है। दुख के कारण दुर्योधन तो कुछ बोला नहीं, कृपाचार्य जी से कहा इनसे बात कर लो। कृपाचार्य ने कहा कि बेटा मेरे बहनोई तेरे पिता आज युद्ध में मारे गए। कैसे मारे गए तो उसकी सब बात बताई। युधिष्ठिर ने ये कहा, युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के कहने से कहा। धृष्टद्युम्न ने उनका बाल पकड़ करके और सिर उतार दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं आज धृष्टद्युम्न को मारूंगा, पांडवों को मारूंगा, मिथ्या धर्मात्मा बने हुए हैं। सत्यवादी सत्यवादी बोलते हैं युधिष्ठिर को, उसने यही सत्य की बात कही क्या? चलो अपन सब वापिस चलते हैं। सबको जोश दिलाया, सेना वापिस आने लगी। अश्वत्थामा ने अपने नारायणास्त्र की बड़ी महिमा कही कि ये नारायणास्त्र मेरे पिता के पास आया और पिता ने केवल मुझे ही इसको सिखाया है। अश्वत्थामा इतनी बात करके वहां से रवाना हुआ और पांडवी सेना को देखकर उसने आचमन करके दिव्य नारायण अस्त्र को प्रकट कर दिया। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, नारायण अस्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे, बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी, समुद्र में तूफान आया, बड़ी बड़ी नदियां उल्टी धारा में चलने लगी, पर्वतों के शिखर भाग टूटने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया, समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। अंदर से थोड़ा प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र पूछता है, संजय उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, धनंजय धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो विजय की आशा छोड़कर भग गए थे, अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर छिप गए थे, किंतु देखते हैं कि वे पुनः उनकी सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है इस विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरवनाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? और हमारी सेना को त्रस्त कर रहा है। अर्जुन बोलते हैं, ध्यान से सुनना कि इसका नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा। अर्जुन बोलते हैं, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा के समान हिंसना प्रारंभ किया, घोड़ा है ही ऐसे करता है, तो ये अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था तब वो पैदा होते ही ही ऐसे हिंसना प्रारंभ किया और उसी समय पृथ्वी हिल उठी और तीनों लोग थर्राने लगे। उसकी आवाज को सुनकर किसी अदृश्य शक्ति ने कहा, इस प्राणी का नाम अश्वत्थामा रख देना चाहिए। वही द्रोण पुत्र शूरवीर अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ आ रहा है। महाराज धृष्टद्युम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर तलवार से सिर काट दिया था, यह अश्वत्थामा उन्हीं द्रोण का पक्ष लेकर धृष्टद्युम्न के क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आ रहा है। हे महाराज, आपने भी तो राज्य के लोभ से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया, धर्म को जानते हुए भी महान पाप किया। क्या आपने नहीं सुना, अन्याय पूर्वक बालिका वध करने के कारण रामचंद्र जी के पावन यश में कितना बड़ा कलंक लगा? उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरुओं को मरवा डालने का ये स्थाई कलंक किनों लोक में फैल गया है। हमारे सीधे साधे गुरुदेव आचार्य ने ये समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता है, वो मेरे शिष्य हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस भरोसे उन्होंने आपका विश्वास किया, परंतु आपने सत्य की आड़ में लेकर सरासर झूठ कहा। हाथी तो यहां और भी कई नाम के मरे होंगे, मरे भी थे, परंतु एक अश्वत्थामा के हाथी नाम से लेकर आपने इतना बबाल खड़ा किया। हाथी मरा था, इसके लिए आपने अश्वत्थामा को मरना बता दिया, फिर वे बेचारे आपकी बात पर विश्वास कर हथियार डालकर अचेत हो गए। उस समय उन्हें कितनी व्याकुलता हुई होगी और कैसे वे पुत्र के वियोग में तड़फ रहे थे, ये आपने अपनी आंखों से देखा। उस समय आपके हृदय में जरा सी गुरु भक्ति पैदा नहीं हुई? तड़पते हुए गुरु को देखकर पास में जाते कहते, गुरुदेव मुझसे मिथ्या वचन निकल गए, आपका पुत्र मरा नहीं है। हे महाराज, आप अपने दिल में सोचिए, क्या आपके दिल में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मर गया था? नहीं मरा था ना, फिर अश्वत्थामा मर गया, ये सरासर झूठ नहीं तो क्या है? ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। हाँ, आपके द्वारा ये काम नहीं होना चाहिए था। ये काम तो सदा कौरव लोग करते आए हैं। महाराज, दोनों सेनाओं में सबसे पवित्र यश आपका था, आपने वो अपना यश समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित हो रहा है, धृष्टद्युम्न को आज काल का ग्रास बनाना चाहता है, नियत थे गुरु को अधर्म पूर्वक मरवाकर। अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने जाइए और यदि आप में शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूं हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा पाएंगे। मैं बार बार मना करता रहा तो भी उस धृष्टद्युम्न ने शिष्य होकर भी गुरु की हत्या कर डाली। विचार करो महाराज, अब हम लोग कितनी आयु को प्राप्त हो गए हैं। हमारा आयु का अधिक अंश बीत गया, थोड़ा ही तो शेष रहा है, और हमारा मस्तिष्क इतना खराब हो गया, झूठ बोल बोल करके गुरुजनों के केश पकड़ करके तलवार से गर्दन काटना और उसे बड़े आनंद और उत्साह के साथ देखना, क्या यही हमारा काम रह गया? अर्जुन बोलता है, जो सदा पिता के भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षण भंगुर राज्य के कारण हमने मरवा दिया। युधिष्ठिर महाराज, कोई हमारा कर्मों का लेखा जोखा लेगा, उसके सामने हम किस मुंह से जवाब देंगे? धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को बड़ा सबल समझ करके अपने पुत्रों का सारा राज्य सौंप दिया था। वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सत्कार किया करते थे, तो भी आचार्य द्रोण मुझे ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते थे। मैं कोई इस पाप से अपने को अलग नहीं मानता हूं। राज्य के सुख लोक में पढ़कर गुरु की हत्या का पाप जितना आपको लगेगा उतना ही मुझे भी लगेगा। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता का, भाई का, स्त्री का, पुत्र का, प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं गुरुदेव के विश्वास को निभा नहीं सका। कितना राज्य का मैं लोभी निकला, मेरे सामने मरे जा रहे थे और ये उनका प्रिय शिष्य अर्जुन चुपचाप देखता रहा। मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वे बूढ़े, तीसरे वो हमारे आचार्य, इस पर भी उन्होंने शस्त्र डाल दिया और मुनि वृत्ति से बैठ गए। इस अवस्था में भी राज्य के लोभ ने उनकी हत्या करवाई और अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना बहुत अच्छा समझता हूं। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए, किसी ने भी बुरा भला कुछ नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, अर्जुन वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण के भांति तुम भी उपदेश देने लग गए। धर्मोपदेश देने का काम जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों का देखो, वे देते हैं। धनुष बाण धारण करना और धर्मोपदेश देना, धनुष बाण तलवार रथ हाथी घोड़े अक्षौहिणी सेनाएं रखना और किसी का युद्ध में मर जाने का नाम हत्या का नाम देते हो? क्षत्रिय का धर्म जो संकट से अपनी और दूसरों की रक्षा करता हो, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका हो, जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता हो, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म यश और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मन में धर्म है, इसका मुझे भी आनंद है। तुम्हारे मन में दया है, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। परंतु अर्जुन, धर्म में प्रवृत्त होने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। धर्म में प्रवृत्त होते हुए भी द्रौपदी को सभा में लाकर उसका केस खींचा गया और हम सब लोग वल्कल वस्त्र धारण कर 13 वर्ष के लिए वन में ठोकरें खाते फिरते रहे। क्या ये हमारे साथ उचित बर्ताव था? बोलो अर्जुन, क्या ये सब बातें सहन करने योग्य थी? बल रहते हुए हमने सहन किया है, हमने जो कुछ किया है वो क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर किया है। शत्रुओं के उस अधर्म को याद कर आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। अर्जुन, मैं क्रोध से भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ निचोड़ सकता हूँ, अपनी भारी गदा के चोट से बड़े पर्वतीय वृक्षों को उखाड़ फेंक सकता हूँ। इंद्रादि देवता, राक्षस, असुर, नाग, मनुष्य, एक भी ऐसा नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो जाए। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए, अथवा तुम सब भाई यहाँ खड़े रहो। अश्वत्थामा का डर यदि आपको लगता है तो डरे हुए बैठे रहो, ये भीम अकेला जाएगा और अश्वत्थामा को पराजित करेगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान स्वीकार करना ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म तो बताए हैं ना, इनमें से कौन से कर्म का पालन द्रोणाचार्य ने किया? क्या वो वेद पढ़ाते थे, शस्त्र विद्या पढ़ाते थे? क्या वे यज्ञ करते थे, शस्त्र विद्या पढ़ाते थे? क्या वे दान देते थे, केवल शस्त्र दान करते थे? फिर वे स्वयं अपने धर्म से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय धर्म में चले आए, तुम किसको धर्म की शिक्षा दे रहे हो? ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया है, तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण कहला करके भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति केवल द्रोण को मारने के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा कहते हो? इन्हीं गुरुदेव ने क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों के सामने ब्रह्मास्त्र चलाया, उनको नष्ट किया, सभी तरह के उपायों से उनको मार डाला। उन्होंने दूसरों के नहीं मेरी भाइयों का संहार किया, अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर मेरा क्रोध शांत अभी भी नहीं हुआ है और मैं इसे पाप नहीं समझता हूं। अर्जुन, तुम ही बताओ, राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के कितने गहरे मित्र थे, तुमने उनको मारा कि नहीं? क्या यह अधर्म नहीं था? क्योंकि वो शत्रु पक्ष में खड़े थे इसलिए आपने मारा है। मैंने भी शत्रु पक्ष में खड़े हुए द्रोणाचार्य को मारा है। क्या तुम्हारा जन्म पितामह भीष्म को बाणों के मारने के लिए हुआ था, लेकिन तुमने उनके शरीर पर बाण तिल तिल की जगह खाली रखे बिना लगाया कि नहीं? जब तुम अपना बाण पितामह के लगा सकते हो तो मैं द्रोणाचार्य का सिर काटता हूं, जिसमें कौन सा पाप है? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का ख्याल करके मैंने तुम्हारे कठोर शब्दों को सुना है। अर्जुन, मैं ऐसे शब्द सुन नहीं सकता हूं। अर्जुन, न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी हूं, द्रोणाचार्य अपने अपराध के कारण से मारे गए हैं, अतः चलो और अपने सब मिलकर के युद्ध करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय, ये दृष्टिद्युम्न भी कैसा है? जिन महात्मा द्रोणाचार्य ने अंगों सहित वेदाध्ययन किया था, धनुर्वेद जिनमें प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण के अंदर वो दोष देखता है, उनको नृशंस कहता है और गुरु घाती दृष्टद्युम्न उनकी निंदा करता है। और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया, धिक्कार है इस क्षत्रियपन को। बताओ तो सही, कितना अनुचित काम हुआ। इस अनुचित बात को सुनकर के भी उन राजाओं ने दृष्टद्युम्न से कुछ नहीं कहा। क्या पांडवों के अंदर से धर्म लुप्त हो गया? संजय ने कहा, नहीं महाराज, आपको उस समय का दृश्य याद नहीं, मुझे याद है। दृष्टद्युम्न जब इस प्रकार बोल रहा था, अर्जुन अपने बाण को सहलाता हुआ दृष्टद्युम्न की ओर तिरछी नजर से देख रहा था और बीच बीच में बड़ा क्रोधित होकर धिक्का धिक्का ऐसे वो बोल रहा था। पास में कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने अर्जुन की थापी देकर कहा, अर्जुन शांत रहो, अर्जुन शांत रहो, क्रोध यहां नहीं करना है, क्रोध उस सेना की तरफ करना है। धृतराष्ट्र सुनकर मुंह बिचकाने लगे, ये कृष्ण कैसा है। उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा स्वयं वासुदेव कृष्ण कुछ नहीं बोले। सात्यकी से नहीं रहा गया। सात्यकी बोला, अरे दृष्टद्युम्न, क्या यहां ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हारी अमंगलमयी बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र मार डाले? खड़खड़ाता तो मेरा भी धनुष बाण है, पर मेरे से बड़े पुरुष यहां बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। नीच दृष्टद्युम्न, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ओछी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? तेरे जीव के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चला जाता? ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोषारोपण करता है। तुझे मार डालना चाहिए। क्षण भर भी तेरे जीवित रहने का इस संसार में कोई अधिकार नहीं। नराधम, तेरे सिवा दूसरा ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़ करके उसका वध करने को तैयार होगा? तूने बीती तथा आगे होने वाली अपनी सात पीढ़ियों को नरक में डुबो दिया। अब यदि मेरे सामने ऐसी बात मुंह से बोलेगा तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। तू हत्यारा है, तू ब्रह्म हत्या का पापी है, इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित करने के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करेंगे। खड़ा रहे, मेरी गदा की एक चोट सहले, मैं भी तेरी गदा की अनेक चोटें सहूंगा। इस प्रकार दृष्टद्युम्न का तिरस्कार किया। उसने भी क्रोध में भरकर उसका मखौल उड़ाते हुए कहा, वाह, सुन ली तेरी वीरता की बातें। सात्यकी, तुम और हम बराबर की उम्र के हैं। सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव नीच लोगों का होता है। संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पापी को क्षमा नहीं करनी चाहिए। तू सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है, स्वयं निंदा के योग्य होकर दूसरों की निंदा करता है। भूरिश्रवा का हाथ कट गया था, वह प्राणांत अनशन करके बैठा था, सात्यकी तूने उसका मस्तक काटा कि नहीं? इससे बढ़कर तेरा क्या पाप होगा? तुम मुझे बोलते हो? जो स्वयं ऐसा काम करे वो दूसरों को क्या कहेगा? बड़ा धर्मात्मा पुरुष बना है। भूरिश्रवा धर्म में स्थित था, तुझे लात मारकर जमीन पर पटक कर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों न उसका वध किया? बाद में तूने उसका वध किया, स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? चुप रह, फिर कोई ऐसी मुंह से बात निकालेगा तो तेरे बाणों से तुझे ही यमलोक में भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथ प्रेत लोक में जाने का उपाय मत कर। धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकी क्रोध से तिलमिला उठा, आंखें लाल हो गई, हाथ में गदा लेकर उछलने लगा और धृष्टद्युम्न के सामने पहुंचा और बोला, अब कोई कड़ी बात कहे। तेरी जीभ बहुत देर से लप लप कर रही, बोल, तू इसी गदा के योग्य है। एकदम डटा हुआ देखा, उसी समय भगवान कृष्ण ने भीमसेन को इशारा किया। भीमसेन भगवान के इशारे को समझ गए, रथ से कूदे और अपने दोनों बाहों से पूरी ताकत लगाकर सात्यकी को पीछे ले गए। सात्यकी, किससे युद्ध करते हो? युद्ध करने के लिए बाहर कौरवी सेना कम है? वो इतना उसमें बल आया, भीमसेन ने दौड़कर 6 कदम पर उसको पकड़ा, फिर भीमसेन ने जमीन में अपने पैर गाड़ दिए, फिर उसको सिरकने नहीं दिया। इतने में ही सहदेव आया। सहदेव बोला, हे नरश्रेष्ठ, ये क्या करते हो? अपने सेना में विद्रोह जाएगा। अंधक वृष्णि और पांचालु से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुम लोग जैसे हमारे मित्रों वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध को क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम भी भूल जाओ कि सात्यकी ने तुमसे कुछ कहा था। पिछली बातें सब भूल जाओ, नए मोर्चे के लिए तैयार हो जाओ। सहदेव कभी धृष्टद्युम्न को कभी सात्यकी को शांत कर रहे थे। धृष्टद्युम्न बोला, भीमसेन छोड़ दो सात्यकी को, यह युद्ध में घमंड में मतवाला हो गया है, आने दो इसको। मुझे तो मारने के लिए अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा की है, ये भी प्रतिज्ञा किए हैं, और भी जाने कौन कौन प्रतिज्ञा करेंगे, लेकिन क्या होगा इसका क्या पता, आने दो, जो भी होगा सो होगा। जीवन लीला तो समाप्त करनी है, लेकिन ऐसे अपमान के शब्द सुनकर के धृष्टद्युम्न मरने वाला नहीं है। सात्यकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। जैसे अपनी अपनी जगह पर सांड गरजते हैं, ऐसे दोनों गरजने लगे। अब भगवान स्वयं आए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतर कर आए और अर्जुन भी साथ में आए। भगवान ने सात्यकी की ओर देखा, धृष्टद्युम्न की ओर देखा, सात्यकी को कहा, जाओ उधर, तुम्हारे रथ में बैठो, करो युद्ध। धृष्टद्युम्न, तुम तुम्हारे रथ में बैठो। भगवान के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ, दोनों वीर कुछ नहीं बोले और युद्ध के लिए आगे चल पड़े। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कही। दुर्योधन, धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया। इसके लिए आज देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को तो अब जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, जरूर मार डालूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे, इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, अतः तुम सेना को लौटा कर ले चलो। दुर्योधन के मन में बड़ा उत्साह आया, सेना को पीछे लौटाया, भय त्याग कर जोर से सिंहनाद करने लगा। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, हजारों शंख भेरियां बज उठी। तब अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का प्रयोग किया। यह एक ऐसा अस्त्र है, इस एक बाण को छोड़ देने के बाद अनेक प्रकार के शस्त्र, गोले, चतुष्चक्र, द्विचक्र, शतग्नि, गदाएं, भाले, छुर्रे एक साथ सब चारों दिशाओं में फैलने लगे। ऐसे सूर्य मंडलाकार चक्र प्रकट हो गए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और सिंजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्यों ज्यों युद्ध करते त्यों त्यों उस शस्त्र का जोर बढ़ता चला जाता। इससे पांडव सेना भस्म होने लगी। यह संगार देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा कि मेरी सेना तो चट 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 समाप्त हो रही है, भाग रही है, और अर्जुन उदास में चुपचाप देख रहे हैं। सब योद्धाओं से उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने, दृष्टद्युम्न पांचालों की सेना के साथ तुम यहां से भाग जाओ। सात्यकी तुम वृष्णि और अंधकों के साथ यहां से चले जाओ। अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा वो ही करेंगे। ये सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूं, कोई भी युद्ध मत करो। मैं अपने भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। अर्जुन की जो मेरे प्रति भावना हुई वो शीघ्र ही पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे असत्य वचनों से इतनी बड़ी आप लोगों के सामने विपदा आई है। सदा ही कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है, अतः इसके लिए मैं अपने बंधुओं सहित अब मरने वाला हूं। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण अपने रथ पर खड़े होकर दोनों भुजाओं को उठाकर सबको रोक रहे, सुनिए मेरी बात, सुनिए योद्धाओं, तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, सवारों सवारियों से नीचे उतर जाओ। ये नारायण अस्त्र है, इसकी शांति का उपाय एक ही है, शस्त्र डाल दो और सिर नीचा करके इसको नमस्कार करो। वाहनों पर खड़े मत रहो, जो जो योद्धा उसके सामने युद्ध करेंगे त्यों त्यों इस शस्त्र के अंदर बल आएगा, और जो जितने नम्र हो जाएंगे इनका ये शस्त्र कुछ भी नहीं करेगा। और यदि युद्ध करके आप रसातल में भी भग जाओगे तो ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण की बातों का प्रभाव पड़ा, सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कहा, वीरों शस्त्र को नहीं फेंका जाता, मरेंगे तो मरेंगे, परंतु किसी के सामने सिर झुकाना, शस्त्र डाल देना और फिर अश्वत्थामा के शस्त्रों के सामने नहीं होगा, कम से कम भीमसेन तो ऐसा नहीं करेगा। मैं उसके ऊपर से काल के भांति प्रहार करूंगा, यदि वो नारायण अस्त्र का मुकाबला करने के लिए चुनौती देता है तो मैं स्वीकार करता हूं। आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन क्यों अपने गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया? तुम तो चंद्रमा के भांति कलंक लगा रहे हो, तुम तो एकदम निर्मल यश वाले थे, आज शस्त्र क्यों डाल दिए? अर्जुन ने कहा, भैया एक नारायणास्त्र, एक गौ माता, एक ब्राह्मण, तीन के सामने शस्त्र डालने का मेरा नियम है। तुम्हारा नियम तुम्हारे पास है, भीमसेन तो नहीं मानता, मैं तो इस अस्त्र के सामने युद्ध करूंगा। क्या चीज है अश्वत्थामा? अब वो जो लड़ाई करे क्यों शस्त्रों में बल आए। अश्वत्थामा भी हंसने लगा, उसने कहा, हाँ भीमसेन है ही मत तो करो हमारे अस्त्र से युद्ध। भीमसेन कहा, ए भीमसेन नहीं डरता, भीमसेन युद्ध करता है। भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार अस्त्र का वेग बढ़ने लग गया, और उसके बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रों को नीचे डालकर रथ हाथी घोड़े आदि वाहनों से उतर गए, और वह महाबली अस्त्र शस्त्र सब वे महाबली सब ओर से शस्त्र वस्त्र हटा दिए और नम्र हो गए। भीमसेन वो जब युद्ध करने लगा, शस्त्र के ऊपर प्रहार करने लगा, तो वो नारायणास्त्र भीम के मस्तक पर आ गया। उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गया। सभी प्राणियों में हाहाकार, विशेषतः पांडव लोग हाहाकार करने लगे। भीमसेन के साथ उनके रथ घोड़े सारथी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग के भीतर आ गए। चारों तरफ आग ही आग हो गई भीमसेन की। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट होने वाला था। यह देख अर्जुन और कृष्ण दोनों तुरंत अपने रथ से कूदे भीमसेन की ओर दौड़े और वहां पहुंचकर आग के अंदर घुस गए, क्योंकि इन दोनों ने अस्त्र त्याग दिए थे इसलिए आग इनको जला नहीं सकता था। नारायण अस्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीमसेन को कहने लगे, भीमसेन रथ से नीचे उतरो। भीमसेन कहता मैं नहीं उतरूंगा। भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, झटका लगाया और उसको नीचे आना पड़ा। कृष्ण मैं नहीं नीचे आता, मैं शस्त्र नहीं छोड़ता, मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, तुम्हारे सामने सिर झुका सकता हूँ, तुमको शस्त्र दे सकता हूँ। अश्वत्थामा के शस्त्र के सामने गा रहे हो, मूर्ख मेरी बात सुन, मना करने में भी तुम युद्ध बंद नहीं करते हो। इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते ना। ये युद्ध करने का समय नहीं है भीमसेन, अपना हट छोड़ो। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके और तुम भी शीघ्र उतर करके, और इस प्रकार से यदि नीचे नहीं आते तो ये नारायण अस्त्र में तुम जल करके भस्म हो जाते। करो प्रणाम, तुम्हारे कहने से प्रणाम करता हूँ, नहीं तो मैं शत्रु के शस्त्र पर प्रणाम करना जानता नहीं हूँ। यहाँ कोई बात नहीं, मेरे कहने से करो। जब तक भीमसेन पूर्ण रूप से शस्त्र के सामने झुक नहीं गए, भगवान ने उसकी गर्दन पकड़े रखी और उसको यूं दबाया, वो झुक गया और नारायणास्त्र शांत हो गया। भगवान ने कहा उठो भीमसेन, देखो दिशाएं। देखने लगे दिशा एकदम साफ, ठंडी हवा, पशु पक्षियों की घबराहट बंद, हाथी घोड़े आदि सभी सुखी। पांडवों की सेना में जो मरने से बच गए थे उनमें अपूर्व उत्साह, और अब आपके पुत्रों के नाश का समय आया धृतराष्ट्र जी। कौरव सेना का मनोबल टूट गया। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामन नारायण अस्त्र का एक बार फिर प्रयोग करो ना, देखो ये पांचालों की सेना सब नष्ट हो जाएगी। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनता से कहने लगा, अरे दुर्योधन, यही एक सबसे बड़ी इस अस्त्र की कमी है कि इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। यदि मैं दोबारा प्रयोग करूं तो ये उल्टा मेरे पर ही आएगा। किसी को भी पता नहीं था, लेकिन वासुदेव कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो जाता था। दुर्योधन ने कहा, भाई तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, इस अस्त्र को दो बार नहीं प्रयोग में ला सकते तो और कोई अस्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि ये तुम्हारे गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं, तुम्हारे बाप को मार दिया फिर भी तुम इनका बदला नहीं लो, तुम्हारे पास दूसरा दिव्यास्त्र है उससे इनको मारो, उस दिव्यास्त्र से इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। बार बार जब द्रोण के हत्यारे शब्द कहा तो अश्वत्थामा का क्रोध दुगना हो गया। धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा, धृष्टद्युम्न का और अश्वत्थामा का खूब घमासान युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा भी कुपित, धृष्टद्युम्न भी कुपित। इस प्रकार से जब इन दोनों को देखा तो सात्यकी अपना रथ लेकर धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए अश्वत्थामा के पास पहुंच गया। देखो अभी तो दोनों लड़ रहे थे, हम लड़ेंगे आपस में हजार बार, लेकिन अश्वत्थामा कैसे मार दे। अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गए, खूब आपस में अश्वत्थामा से युद्ध हुआ और सात्यकी को घायल कर दिया। सात्यकी थोड़ी देर बेहोश होकर पुनः अपना पराक्रम दिखाने लगा। अश्वत्थामा दूसरे रथ पर बैठकर सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में आया और कहा, सात्यकी तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु ये धृष्टद्युम्न और तुम दोनों मेरे द्वारा काल के ग्रास बन चुके हो, अब किसी तरह बचकर नहीं जाओगे। मैं अपने सत्य और तपस्या की सौगंध खाके कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो एकत्रित कर लो, मैं सोमकों का संहार कर ही डालूंगा। बड़ा तीखा बाण मारा, तीखे बाण से कवच उसका छिन्न भिन्न हो गया। सात्यकी का रथ के पिछले भाग में जा बैठा और एक बार सात्यकी को उसके सारथी ने अश्वत्थामा के सामने से हटा लिया। फिर अर्जुन, भीमसेन, धृतक्षत्र, चेली, राजकुमार, सुदर्शन ये सब आए और वहां पर बड़ा घमासान युद्ध हुआ और अश्वत्थामा को घायल किया। उसने भी अर्जुन के सामने अपना युद्ध किया। सुदर्शन नाम का जो पांडव पक्ष का योद्धा था, उसकी अश्वत्थामा ने भुजाएं काट दी और उसका मस्तक भी उड़ा दिया। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, बाण लगाए, दोनों के अंदर खूब घमासान युद्ध हुआ, एक दूसरे के बाण काटते हैं। फिर अश्वत्थामा ने भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया, सारथी मूर्छित हो गया, घोड़ों की बागडोर छूट गई। ऐसे समय में भीमसेन के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते देखते भग चले और अश्वत्थामा हर्ष में भर करके और वो शंख बजाने लगा। भीमसेन इधर उधर भाग करके अपना समय पूरा किए। अर्जुन ने देखा कि सेना हमारी भग गई है। भीमसेन का सारथी मर जाने से घोड़े बेकाबू हो गए। अर्जुन अश्वत्थामा के पास पहुंचा। तेरे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता, जितना पराक्रम, कौरवों पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष, वह सब आज हमारे सामने रख दो। धृष्टद्युम्न का या कृष्ण सहित मेरा सामना करने का समय आ गया है, आओ करो सामना। तुम आजकल बहुत उद्दंड हो गए हो, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन अश्वत्थामा के चेदी देश के युवराज, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पूर्ववंशी बृहत्क्षत्र सुदर्शन को तो मार ही दिया था। धृष्टद्युम्न ने सात्यकी भीमसेन को पराजित कर दिया था। अर्जुन ने आचार्य पुत्र से जब ये वचन कहे, तब अश्वत्थामा कृष्ण और अर्जुन पर कुपित हो गया और बड़े सावधानी के साथ युद्ध करने लगा और उसने आचमन करके आग्नेयास्त्र उठाया और उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने शत्रु थे सबको नष्ट करने के लिए आग्नेयास्त्र उठाया था। उसके छूटते ही सब जगह आग फैल गई। वे लपटे अर्जुन की तरफ आने लगी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई, सूर्य का तेज फीका हो गया, बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग कांपने लगे, सारे जीव छटपटाने लगे। दिशा उपदिशा, आकाश, पृथ्वी सब ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े भयभीत हो रहे हैं, पांडव सेना आग्नेयास्त्र से दग्ध हो रही है। इतना घोर अंधकार छा गया, अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेना को कोई दिखाई नहीं पड़ता था, इतना अंधकार सा छा गया। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर जैसा अस्त्र का प्रयोग किया था वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। और फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब सब क्षण भर में उसका प्रभाव नष्ट हुआ, सब लोगों के सांस में सांस आई और इधर पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना थोड़े से समय में नष्ट हो गई थी, नामो निशान मिट गया, परंतु भगवान कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर कोई आंच नहीं आई। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े, आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभायमान था। उसे देख आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, पांडवों के हर्ष की सीमा नहीं रही। कृष्ण और अर्जुन ने बड़ा सिंहनाद किया। आग्नेयास्त्र से मुक्त देखकर अश्वत्थामा बड़ा दुखी हो गया, हक्का बक्का रह गया, सोचता है ये क्या बात है। फिर इतना क्रोध आया वो रथ से कूद पड़ा और मुझे धिक्कार है, मेरे अस्त्रों को धिक्कार है, इन अस्त्रों का इतना प्रभाव बताया सब झूठा है, ऐसा कहता हुआ रणभूमि से भाग चला। इतने में ही व्यास जी आए, अश्वत्थामा ने प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, व्यास जी से कहा अश्वत्थामा ने, भगवान इसे माया कहें या भाग्य कहें मेरी समझ में नहीं आता, ये क्या हो रहा है, ये आग्नेयास्त्र झूठा हो गया, नारायणास्त्र झूठा हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई, संसार के किसी उलट फेर की कोई सूचना है, क्या बात है, कृष्ण और अर्जुन जीवित कैसे बच गए, मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को कोई भी चुका नहीं सकता है, फिर क्या बात है, एक अक्षौहिणी सेना जल करके राख हो गई, कृष्ण और अर्जुन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्या ये मनुष्य नहीं है, इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ। हे व्यास जी महाराज, मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। व्यास जी बोले, बेटा मैं तो अर्जुन के पास मिलने जा रहा था, तुम तो बीच में आ गए, तुमने हमसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न किया है उसकी बात सुनो। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों की भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर रहकर 66,000 बरस तक केवल वायु का आहार पीकर के शरीर को सुखा डाला था। उसके बाद उतने दूने वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने नारायण को दर्शन दिया। विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंद मग्न हो गए, शंकर जी को प्रणाम किए और शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे आदिदेव, जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपके पुरातन सर की रक्षा की थी, जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे प्रकट हुए हैं। शंकर जी, देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गंधर्व, यक्ष, ये सब प्राणी समुदाय आपसे पैदा हुआ है। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का पद, पितरों का लोक, विश्वकर्मा की सुंदर शिल्प कला आदि आपसे पैदा हुई है। शब्द, स्पर्श, आकाश, वायु, रूप, तेज, रस, जल, गंध, पृथ्वी आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपसे भिन्न कोई नहीं है। आप संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के केंद्र हैं। वे विद्वान पुरुष आपके सायुज्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा शुद्ध चिंतन सुनकर के पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदान देते हुए कहा, नारायण मेरी कृपा से किसी प्रकार के अस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले सूखे पदार्थ और स्थावर जंगम प्राणी के द्वारा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलवान हो जाओगे। इस प्रकार नारायण भगवान को शंकर जी ने वरदान दिया है। वे नारायण भगवान ही कृष्ण हैं। इन कृष्ण ने पहले ही शंकर जी से वरदान ले लिया है। वे ही भगवान नारायण माया से संसार को मोहित करते हुए इनके स्वरूप में विचर रहे हैं। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए हैं। अर्जुन उन्हीं नर के अवतार हैं। इसलिए नर और नारायण इनको तुम मनुष्य मत समझो। तूने भी पूर्व जन्म में शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए शरीर को दुर्बल किया था और भगवान शंकर ने तुमसे मनोवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्वमय स्वरूप को जानकर लिंग रूप से उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को सर्वभूतमय जानकर उसका अर्चन करता है उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वेद व्यास जी के वचन सुनकर अश्वत्थामा ने मनी मन शंकर जी को प्रणाम किया और आश्चर्य का कृष्ण साक्षात नारायण अर्जुन उनके सहचर साक्षात नर हमें तो पता ही नहीं था, हम उनको प्रणाम करते हैं। छावनी में लौट आया। तदनंतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाएं भी अपनी अपनी छावनी में आ गए। इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिन तक पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक में चले गए थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय दृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने आगे क्या कार्य किया? संजय कहते हैं, यहां मैं नारायण भगवान के अवतार की बात बता रहा हूं, यहां मैं शंकर भगवान नारायण का प्रिय संवाद सुना रहा हूं, द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक की बात बता रहा हूं और आपको लड़ाई की बात अच्छी लगती है तो सुनो। उस दिन का युद्ध तो समाप्त हो गया और महर्षि वेदव्यास जी घूमते हुए अर्जुन के पास पहुंच गए। अर्जुन ने कहा, हे व्यास जी महाराज, इस युद्ध भूमि में शिविर में आप अकस्मात, जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा था। मैं यूं बाण लगाता हूं तो बाण के आगे मुझे वो एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। उसके हाथ में त्रिशूल था, सूर्य के समान तेजस्वी था, पैरों से उसका स्पर्श नहीं था, पृथ्वी का स्पर्श नहीं था। त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी उसे हाथ से कोई नहीं, वो हाथ को हाथ से कभी नहीं छोड़ता था, त्रिशूल हाथ में ही रहता था। उनके तेज से एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होते थे, ये क्या बात थी? व्यास जी बोले हंसते हुए, अर्जुन तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है ना, वे तेजोमय अंतर्यामी प्रभु संपूर्ण जगत के स्वामी सबके शासक वरदाता, तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण में जाओ, वे महान देव हैं, उनका हृदय विशाल सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं, उनकी रुद्र संज्ञा है, भुजाएं बड़ी हैं, उनके मस्तक पर शिखा और शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा देता है, सबके संहारक हैं, निर्विकार हैं, किसी से पराजित न होने वाले हैं, सबके साक्षी हैं, सबकी आत्मा हैं, वे भूत भविष्य सबको जानने वाले हैं, तीनों लोकों के सृष्टा हैं, भूनों के अधिष्ठान भूत हैं, भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं, वे सब महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं। देखो वे भगवान शंकर ही तेजस्वी पुरुष हैं जो कृपा करके तुम्हारे आगे चला करते थे और इस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा कृपाचारी कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते थे उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर रहा था? और जब ही वे आगे आकर खड़े हो जाए उनके सामने ठहरने का साहस नहीं होता था। अर्जुन तुम सोचते थे कि कभी कभी तुम्हारी सेना के सामने से कौरवी सेना भाग करके दूर चली जाती थी, डर लगती थी, वो उस शंकर का ही प्रभाव था। इसलिए शंकर को नमस्कार कर, जो नीलकंठ सूक्ष्म स्वरूप अत्यंत तेजस्वी संसार समुद्र को तारने वाले तीर्थ स्वरूप उनको प्रणाम करो। देवताओं की भी देवता अनंत रूपधारी अनंत नेत्रों वाले सबकी कामना को पूर्ण करने वाले परम शांत सबके पालक उन भूतनाथ को प्रणाम करो। तुम उन वरदायक त्रिभुवनेश्वर भगवान शिव की शरण में जाओ, वे निर्विकार हैं, भगवान रुद्र को नमस्कार है। मैं महादेव के दिव्य कर्मों का ज्ञान तुम्हें कराता हूँ। एक समय की बात है, दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की, इससे यज्ञ में महान उपद्रव खड़ा हो गया, सभी देवताओं पर भय छा गया। जब उनका भाग अर्पित किया गया तब दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया। तब से देवता लोग सदा ही शंकर जी से भयभीत होते हैं। इसी प्रकार तीन बलवान असुरों ने आकाश में नगर बना रखे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। सोने का जो नगर बना उसका मालिक था कमलाक्ष, चांदी का जो नगर बना उसका मालिक था तारकाक्ष, और लोहे का जो नगर बना उसका मालिक था विद्युन्माली। ये तीनों सब देवताओं को बड़ा परेशान करते थे। सब देवता शंकर के शरण में आए, कहने लगे भगवान ये त्रिपुर निवासी दैत्य हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा वरदान दे दिया, उसके घमंड में ये हम लोगों को बहुत कष्ट दे रहे हैं, आपके सिवा इनका नाश करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। तब उन्होंने गंधमादन तथा विंध्याचल इन दो पर्वतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया, समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी को रथ बनाया, नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान पर रखा, चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने, एल पत्र के पुत्र को और पुष्प दंत को जुए की कीलें बनाई, मलयाचल का जुआ बनाया, तक्षक नाग ने जुआ बांधने की रस्सी का काम किया, प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोड़े की डोर में सम्मिलित किया, चारों वेद रथ के चार घोड़े बनाए गए, उपवेद लगाम बनाए गए, गायत्री और सावित्री का पगहा बना, ओंकार चाबुक बना, ब्रह्मा जी सारथी बने, भगवान विष्णु उत्तम बाण बने, अग्निदेव को उसका फल बनाया, वायु को बाण की पांख बनाई, वेवस्वत मनु की पूंछ बनाई, बिजली उस बाण की धारा हुई, सुमेरु पर्वत को ध्वजा बनाया। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए और 1000 बरस तक वे युद्ध करते रहे। तीनों पुर में रहने वाले जितने दैत्य थे उन सब का संहार हुआ। एक बार इसी युद्ध को देखने के लिए पार्वती जी आई। पार्वती जी की गोद में एक बालक था जिसके सिर में 5 शिखाएं थी। पार्वती ने देवताओं से पूछा, मेरी गोद में कौन है? इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की जाग आग उठी। बड़ा विचित्र पुत्र है इनका, वो पुत्री समझ रहे थे। उन्होंने उस बालक के ऊपर वज्र का प्रहार किया, लेकिन उस बालक ने हंस करके उसको वहीं रोक दिया। इंद्र का हाथ ज्यों का त्यों रह गया। तब इंद्रादि देवताओं के साथ सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज पार्वती की गोद में एक अपूर्व बालक था, हमने उसको पहचाना नहीं, हमने उस पर वज्र का प्रहार किया और खेली खेल में उस छोटे से बालक ने हमको जीत लिया, हम आपसे पूछते हैं वो बालक कौन था? ब्रह्मा जी ने कहा, वो अमित तेजस्वी साक्षात भगवान शंकर थे। पार्वती की गोद में क्यों आए? पार्वती की गोद में तुम्हारा ध्यान का विषय बनने के लिए आए थे। कैसे सुंदर स्वरूप बाल रूप, तुम शिव का ध्यान करो। आए तो थे इसलिए और तुम तो उनके साथ खटपट करने लगे। अब हमसे तो गलती हो गई, अब इसका क्या उपाय होगा? तो भगवान बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, जाओ तुम इनको प्रणाम करो। ब्रह्मा जी, हमारी तो वहां जाने की अकेले की हिम्मत नहीं होती है, आप स्वयं हमारी सहायता करो ना। तो जैसे पिता के साथ पुत्र रहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के साथ देवता गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान शंकर ने देवताओं को निश्चिंत बना दिया। ऐसे ये भगवान शंकर हैं, इनका दिव्य प्रभाव है, जो इस प्रभाव को सुनता है उसका सब प्रकार से कष्ट दूर होता है। वेदों में दो प्रकार की उपासना बताई महेश्वर की, एक शतरुद्रीय एक अनंत रुद्रीय। सारे संसार की उत्पत्ति के कारण होने से इनको भाव बोलते हैं, स्थिति का कारण होने से इनको स्थाणु कहते हैं, और कपि नाम है श्रेष्ठ का और वृष नाम है धर्म का। तो धर्म में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए इनका नाम वृषा कपि है। इस प्रकार तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए पिनाकधारी महादेव जी आगे आगे चल रहे थे। और अर्जुन तुम क्या बात पूछते हो? तुम वो दिन याद करो, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली थी। स्वप्न में तुमको कृष्ण भगवान गिरिराज हिमालय के शिखर पर ले गए थे, जिनका तुमने दर्शन किया था। वे भगवान तुम्हारे आगे आगे इसलिए भी चल रहे थे कि वे नारायण की सेवा करें, कृष्ण की सेवा के लिए आए थे। ये भगवान शिव का हमने तुमको चरित्र सुनाया है। जाओ अर्जुन, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे खास मित्र, साथी, सहयोगी, मंत्री, रक्षक, जो कुछ समझो, तुम्हारे पास भगवान कृष्ण है। संजय कहते हैं, क्या अर्जुन के चेहरे पर प्रसन्नता लौटी है। द्रोण का सारा दुख उनके मन से निकल गया और पराशर नंदन व्यास जी के चरणों में गिर गए। भगवान शंकर की और कृष्ण की महिमा सुनकर अर्जुन तरबोतर हो गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही शंकर भगवान के इस स्तवन का पाठ और श्रवण करने से मिलता है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सब भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाले हो जाते हैं। इस प्रकार ये द्रोण पर्व समाप्त हो गया। अब कल से कर्ण पर्व की कथा चालू होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की भक्तवत्सल भगवान की जय।